दोस्तों, दशहरे के तुरंत बाद ही विजयादशमी मनाते हैं। ये विजयादशमी आसुरों पर देवताओं के विजय का प्रतीक महान त्यौहार है। इसके साथ अनेक प्रतीकात्मक कथाएं जुटी हुई हैं। कहते हैं कि जब आसुरों के अनाचार और अत्याचार से धरा प्रकंपित हो उठी थी, देवत्व का लोप हो गया था और मानवता कराह रही थी, तब शक्ति रूपिणी दुर्गा ने उनका विनाश किया और देवत्व की पुनः स्थापना की। इसी दिन देव विजयी रावण पर राम ने विजय प्राप्त किया, जिससे देवभूमि भारत पर पावन सत्व प्रदान राम राज्य की स्थापना हुई, जिसका गायन करते हम आज थकते नहीं हैं।
दशमी मनाओ, विजया दशमी मनाओ,
विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ।
रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ।
विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ।
हर वर्ष दशहरा अथवा विजयादशमी का उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कई दिन पहले से ही रामलीला शुरू हो जाती है। बच्चे बूढ़े सभी बड़े उत्साह से रावण के मरने तथा जलाने का इंतजार करते रहते हैं, और जब दशहरे का दिन आता है तो खूब खुशियां मनाते हैं। आप भी खुशियां मनाओ। और दोस्तों, अब इस गीत के बाद रावण का आध्यात्मिक रहस्य सुनेंगे। तब तक नाचो, गाओ, गरबा रास करो।
रास रमो रे, जिसने है जाना तुझे, उसने पहचाना तुझे, पाई अनमोल खुशी नाचो झूमो रे।
जिसने है जाना तुझे, उसने पहचाना तुझे, पाई अनमोल खुशी नाचो झूमो रे।
झूमो रे झूमो रे,
गरबा रास रमो रे,
झूमो 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 रे,
रावण का नाम सुनते ही हमारे सामने दस मुख वाला व्यक्ति आ जाता है। अगर रावण दस मुख वाला था तो वह खाता किस मुख से होगा? वह बात किस मुख से करता होगा? क्या उसके 20 कान रहे होंगे या दो ही रहे होंगे? किन आंखों से एक व्यक्ति विशेष की ओर देखता होगा और सोचता किस दिमाग से होगा? दोस्तों, आज भी हम कोई जुड़वा बच्चे को देखते हैं तो न केवल उनके दो मुख होते हैं, बल्कि वे दो ही व्यक्ति होते हैं। उनके सोच विचार भी अलग अलग होते हैं। तब दस सिर और एक धड़ अथवा एक शरीर वाला व्यक्ति वाला एक ही मन वाला कैसे रहा होगा? तब प्रश्न उठता है कि रावण को दशानन कहा गया है, इसका कोई तो आधार होगा ही, कोई तो आध्यात्मिक रहस्य होगा। तो दोस्तों, सुनते हैं आगे इस बात को।
कबड्डी 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 खेल रचाया, कबड्डी 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 खेल रचाया।
राम और रावण के बच्चों को खूब लड़ाया, बच्चों को खूब लड़ाया। महारथी ये सारे
कौन जीते कौन हारे,
ये महारथी ये सारे
कौन जीते कौन हारे,
संगम में खेल कराया
कराया।
कबड्डी 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 कबड्डी।
हाँ दोस्तों, रावण को दशानन कहने का कारण तो अवश्य है, परंतु वह तभी समझ में आ सकता है जब हम रावण को कोई हड्डी मांस के शरीर वाला व्यक्ति न मानकर, अर्थात रावण को व्यक्तिवाचक नाम ना मानकर हम इस शब्द के आध्यात्मिक अर्थ पर विचार करें। अर्थात रावण शब्द का अर्थ होता है रुलाने वाला। ऐसा जो अर्थ है उसे ध्यान में रखते हुए रावण शब्द को माया का वाचक माने, क्योंकि माया अथवा मनोविकार ही आत्मा को दुख दिलाने तथा रुलाने का कारण बनते हैं। अब जैसे रावण अथवा दशानन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, देश, चल, हट और आलस्य नाम के विकार समूह अथवा दस रूप वाली माया का प्रतीक है, वैसे ही कुंभकर्ण समस्त चेतनाओं की न सुनने का और अति निद्रा का वाचक है। मेघनाथ मेघ की गर्जनों के समान वचन अर्थात निरर्थक यौ भयप्रद वचन का खार स्वभाव की कठोरता, कटुता, कूरता अथवा दूषण दोष रोपण या निद्रा का और मारिच मिथ्याचार भ्रांति कुचल अथवा धोखे का प्रतीक है। इन्हीं अर्थों को लेकर ही मनुष्य राम कथा का वास्तविक रहस्य जान सकता है और रावण माया पर विजय प्राप्त करके सच्चा दशहरा मना सकता है। रावण के बारे में यह जो प्रसिद्ध है कि उसके नौ सिर कट जाने के बाद फिर लग गए और कि रावण जो रूप चाहे सो धारण कर सकता था, यह युक्तियां भी रावण को माया का वाचक मानने से ही समझ में आ सकती है, क्योंकि माया ही अनेक अनेक स्थूल और सूक्ष्म रूप धारण कर सकती है। इस महाबली दस विकारों अथवा रुलाने वाली माया को केवल एक परमपिता परमात्मा ही हरा सकते हैं। इसलिए परमात्मा का ही एक गुणवाचक नाम हरि, हरा अथवा राम है। इस ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिमान राम द्वारा रावण राज्य को मिटाने तथा राम राज्य की स्थापन करने की याद में ही हर वर्ष दशहरा मनाया जाता है। भारत में राम और राम राज्य का बहुत गायन है। यह शायद ही कोई नगर होगा जहां राम का कोई मंदिर न हो और शायद ही कोई मनुष्य होगा जिसने राम कथा को न सुना हो। परंतु रामायण में जैसे सीता का जन्म खेत में हल चलाते समय एक कूड़ से हुआ बताया गया है, न तो वैसा किसी मानव का जन्म हो सकता है और जैसे रावण के दस सिर बताए गए हैं, ना ही वैसा किसी व्यक्ति के दस सिर हो सकते हैं। इसीलिए इस विचारधारा के लोग तो कहते हैं कि राम कथा एक आध्यात्मिक कथा है, एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है। और आप देखेंगे कि भारत में आध्यात्मिक रामायण नाम से एक ग्रंथ प्रसिद्ध भी है। महात्मा गांधी जी जो कि स्वयं एक राम भक्त थे और जिनके जीवन के अंतिम क्षणों में भी हे राम ये शब्द निकले, वह भी रामायण को एक ऐतिहासिक ग्रंथ न मानकर धार्मिक अथवा आध्यात्मिक ग्रंथ ही मानते थे, यद्यपि वे राजा राम को मानते थे।
पिता है
तू ही माता, तू ही पिता है,
तू ही माता, तू ही पिता है,
तू ही माता, तू ही पिता है,
तू ही तो है राधा का श्याम,
दोस्तों, आज राम कथा इतनी लोकप्रिय है कि भारत के बाहर भी कई देशों में लोग राम कथा सुनते और उसे नाटक रूप में देखते हैं। केवल आदि सनातन धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन आदि मतावलंबी भी राम कथा को किसी न किसी तरह मानते हैं। इंडोनेशिया देश में तो मुसलमान लोग भी इसे मंच पर अभिनय में लाते हैं। कंबोडिया देश में राम मंदिर जो अंगकोर वत नाम से विश्वविख्यात है। हाँ, विभिन्न देशों, संप्रदायों और भाषाओं में जो रामायण मिलती है उसमें अंतर है। शोध कार्य करने वाले कहते हैं कि वाल्मीकि द्वारा कविताबद्ध किए जाने से पहले भी रामकथा लोक गीतों आदि के रूप में प्रचलित थी। अतः समयांतर में इसके नाट्य रूपांतर होने की बात मानी जा सकती है।
जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने, जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो।
दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि राम की विजय का कारण उनका चारित्र बल, उनकी जितेंद्रियता, उनकी संयमशीलता, उनकी योग शक्ति आदि थी। उदाहरण के लिए हमारे वर्तमान समय में गांधी जी ने विदेशी अंग्रेज शासकों के विरुद्ध सत्य और अहिंसा, असहयोग आदि का जो नैतिकता प्रदान संग्राम चलाया उसमें शास्त्र बल का सहारा लेना वर्जित था। आज के समय में भी जब राम राज्य का अथवा देवी राज्य का पक्ष इतना नैतिक, इतना अहिंसक और ऐसा आदर्शमय हो सकता है तो परमात्मा राम के दिव्य चारित्रों तथा अलौकिक कृत्यों में हिंसा या शास्त्र बल अथवा शारीरिक पशु बल का आश्रय लेने की बात एकदम असंगत और नितांत मिथ्य लगती है। दोस्तों, निराकार राम अध्यात्म विद्या के ईश्वर अथवा प्रभु है। वे ही परम कल्याणकारी रूप में भगवान शिव है। ऐसी कथा है कि शिव भगवान जब अपनी शक्तियों सहित संसार में अवतरित होते हैं तब वे आसुरों का, आसुरी राज्य और विकारी एवं हीन समाज का अंत करके विश्व को नवीन और अविकारी बना देते हैं और देवी देवताओं का राज्य तथा दैवी समाज की स्थापना कर देते हैं। सृष्टि को विकारी से निर्विकारी, पुरानी से नई और तमो प्रदान दुखी से सतो प्रदान सुखी बनाने का परम कल्याणमय अनुपम कार्य संपन्न करने के कारण ही भारत में परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम शिव गाया गया है। शिव का शब्दार्थी होता है कल्याण अर्थात कल्याणकारी।
तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है,
तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है,
तू ही तो है राधा का श्याम, सबका स्वामी तू, अंतर्यामी सबका स्वामी
तू, अंतर्यामी सबका स्वामी तू, अंतर्यामी सबका स्वामी,
तेरे चरणों में चारों धाम।
दोस्तों, रामायण के अनुसार जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए तो लंका विजय से पहले उनकी पूंछ में आग लगाई गई, जिससे उन्होंने सारी लंका को जला दिया। वास्तव में इस कथानक का गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है, जिसे समझकर धारण करने से आध्यात्मिक पुरुषार्थी का आध्यात्मिक स्तर काफ़ी ऊंचा व व्यवहारिक हो जाता है तथा अपने निजी पुरुषार्थ व आध्यात्मिक सेवा में काफ़ी मदद मिलती है।
जय संकट मोचन भगवान, जय बजरंगी जय हनुमान,
जय बजरंगी जय हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान,
पवन पुत्र हनुमत बजरंगी श्री राम के प्यारे, जो भी आया शरण तुम्हारी उसके कष्ट निवारे, तुम हो शक्ति मान सुधर अवतार हो संकट हारी, चमन की रक्षा सदा करो मैं आया शरण तुम्हारी, जिसने आपका नाम लिया बजरंगी पवन दुलारे, दिल में आई दया तो बन गए आप उसके सहारे, देव मानुष या जति सती जिसने भी ध्यान लगाया, राम भरोसे महावीर हर एक का कष्ट मिटाया, हर एक को उपकार का बंधन हनुमान जी डाला, निर्मल चमन भी आपके आसर जपे आपकी माला।
ज्ञान सागर शिव ने जो प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान सुनाया है, उसका सार है कि पुरुषार्थी स्वयं को देह से सर्वता न्यारा ज्योति बिंदु आत्मा समझे, जिसके मूल गुण ज्ञान प्रेम आनंद व शांति है, वह ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव की निरंतर याद में रहकर कर्म करे तो उसके कर्म श्रेष्ठ होंगे व उसके संस्कार स्वभाव संपर्क संबंध संकल्प वृत्ति व दृष्टि में निश्चित परिवर्तन होगा। दोस्तों, हनुमान जी की जो पूछ है वह लगा हुआ पुराने संस्कार पुराने स्वभाव का प्रतीक है, जिसे शिव परमात्मा ने बताया है। वह हर प्रकार के लगाव, चाहे किसी व्यक्ति, वस्तु, संकल्प, संपर्क, संबंध या विशेषता हो, उससे मुक्त होना, यह तो अनुभव का विषय है। वास्तव में लगाव ही बंधन का स्वरूप है। यह पुरुषार्थी को अशरीरी अवस्था प्राप्त करने में मुख्य बाधक है। लगाव वाला व्यक्ति कभी भी सर्वशक्ति संपन्न हो ही नहीं सकता और न धर्मराज की सजाओं से छूट सकता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, तन मन धन बुद्धि सब स्वाहा कर दो तो मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा विचार कहाँ से आएगा? संपूर्ण स्वाहा हो गया तो मेरा तेरे में परिवर्तन हो जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि यह तन मन धन तो परमात्मा का अमानत है। यदि अभी मेरा मेरा अक्षर कहते हैं तो स्पष्ट है कि अभी संपूर्ण समर्पण नहीं हुआ है, अथवा अभी बंदर यहाँ महावीर की पूंछ को आग नहीं लगी है। जब तक इस मेरा रूपी पूंछ को आग नहीं लगती है, तब तक पुरुषार्थी के अंदर विराजमान लंका अथवा विकारों, पतित दुखदायी सृष्टि समाई हुई है, उसका विनाश नहीं हुआ है।
जो करता है योगी वो है, जो करता है त्याग सब विकारों का, त्याग सब विकारों का, निंदा स्तुति हानि और लाभ में, निंदा स्तुति हानि और लाभ में, एक समान वो रहता है, एक समान वो रहता है, योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है।
वास्तव में परमात्मा ने हमें समझाया है कि सूक्ष्म पुरुषार्थ का विषय ही इसमें मेरा की पूंछ को आग लगाकर इसे इस प्रकार संपूर्ण भस्म कर देना है, जिससे कि इसकी राख भी न मिले। अर्थात यह कामना ही आपकी मनसा से संपूर्णता निकल जावे। इस तरह परमात्मा कहते हैं, यही वास्तव में काम देनु बनने की सहज व सरल युक्ति है।
जय संकट मोचन भगवान, जय बजरंगी जय हनुमान,
जय बजरंगी जय हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान,
पवन पुत्र हनुमत बजरंगी श्री राम के प्यारे, जो भी आया शरण तुम्हारी उसके कष्ट निवारे, तुम हो शक्तिमान सुधर अवतार हो संकट हारी, चमन की रक्षा सदा करो मैं आया शरण तुम्हारी, जिसने आपका नाम लिया बजरंगी पवन दुलारे, दिल में आई दया तो बन गए आप
दोस्तों, भक्त लोग कहते हैं कि राम पतित पावन है, वे केवन हार और तारन हार भी है, सभी के दाता राम, राम सवारे काम, ऐसे भी वे कहते हैं। अंततः स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हम पतित से पावन बनते जा रहे हैं, क्या हमारे जीवन की नाव इस विषय सागर से पार होती जा रही है, क्या हमारे सब काम सवर रहे हैं और हमें संपूर्ण पवित्रता, सुख और स्वस्थता, शांति और संपत्ति की प्राप्ति हो रही है। यदि नहीं हो रही है तो सिद्ध है कि हमने भले ही सारी रामायण सुन ली है, परंतु यह पूछना बाकी है कि राम कौन थे और रावण कौन था।
पिता है
तू ही माता, तू ही पिता है,
तू ही माता, तू ही पिता है,
तू ही माता, तू ही पिता है,
तू ही तो है राधा का श्याम, सबका स्वामी,
तू अंतर्यामी सबका स्वामी,
तू अंतर्यामी सबका स्वामी,
तू अंतर्यामी सबका स्वामी,
तेरे चरणों में चारों धाम।